लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी, मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लाउदातो सी के तीसरे अध्याय पर्यावरणीय संकट में मानव के जड़ की चर्चा करते हुए अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में रोजगार की सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में कहा कि रोजगार निरंतर दिया जा सके। इस संबंध में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम एक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें जो विभिन्न उत्पादन को बढ़ावा देता और व्यापार को सृजनात्मक प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के पैमाने विशेष रूप से छोटे किसानों को अपनी जमीन बेचने या उन्हें अपने पारंपरिक फसलों के उत्पादन का परित्याग करने को बाध्य करता है। नागरिक अधिकारियों का यह कार्य और कर्तव्य है कि वे सभी छोटे उत्पादकों और उनके विभिन्न उत्पादनों का स्पष्ट और दृढ़ रूप से सहयोग करें। व्यापार अपने में एक नेक बुलाहट है जो धन उत्पन्न करने और दुनिया को बेहतर बनाने हेतु निर्देशित होता है। यह जिन क्षेत्रों में कार्यशील होता उनमें समृद्धि हेतु एक फलदायक स्रोत हो सकता है, विशेषकर यदि यह रोजगार उत्पन्न की ओर नजरें रखता जो आम भलाई हेतु अपनी सेवा को एक मुख्य भाग स्वरूप देखता है। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मानव और सृष्टि का दर्शन शास्त्रीय और ईश शास्त्रीय दृष्टिकोण जिसे मैंने प्रस्तुत किया है, यह अपने में स्पष्ट है कि मानव जो अपने में तर्क और विवेक से नवाजा गया है, कोई बाह्य वस्तु नहीं जिसे अपने में अलग किया जा सके। जबकि मानवीय जीवन की जरूरतों के अनुसार पृथ्वी और जीव जंतुओं पर मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हमें यह शिक्षा देती है कि जीव जंतुओं पर प्रयोग नैतिक रूप से मान्य है यदि वे एक निश्चित आयाम तक कायम हो और वे मानवीय जीवन की सुरक्षा या देखरेख में मददगार सिद्ध होते हों। धर्म शिक्षा इस बात पर दृढ़ता पूर्वक जोर देती है कि मानवीय शक्ति सीमित है और जंतुओं को कष्ट देना या बिना उद्देश्य के उन्हें मार डालना मानवीय सम्मान के विपरीत है। उनका ऐसा उपयोग और उनका परीक्षण करना धार्मिक सम्मान की मांग करता है जो सृष्टि के अनुकूलन हो। संत पापा फ्रांसिस इस परिस्थिति में संत पापा योहान पॉलस द्वितीय के संतुलित विचारों की याद करते हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को लाभों के तौर पर जोर देते हैं, जो मानवीय दिव्य बुलाहट का सार ईश्वर के सृजन कार्य में उत्तरदायी रूप से भाग लेते हुए उसका साक्ष्य प्रस्तुत करना है। वहीं हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम पर्यावरण के एक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यदि हम इसके परिणाम के अन्य भागों पर ध्यान न देते हों। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कलिसिया उन मूल्यों का लाभ उठाती है जो आवाणिक जीव विज्ञान के अध्ययन और अनुप्रयोगों से अनुवांशिकी और अन्य विषयों और कृषि तथा उद्देश्य में उनके तकनीकी अनुप्रयोगों के परिणाम स्वरूप आता है। उसके साथ ही उन्होंने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है कि यह हमें अंधाधुंध अनुवांशिक हेराफेरी की ओर अग्रसर ना करे जो इस तरह के हस्तक्षेपों के नकारात्मक परिणामों को नजरअंदाज करता है। मानवीय सृजनात्मकता का दमन नहीं किया जा सकता है। यदि एक कलाकार को उसकी संरचनात्मक का उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है, तो हमें चाहिए तो हम किसी को भी उनमें से किसी को ना रोकें जो अपने में विशेष उपहारों को विज्ञान और तकनीकी की प्रगति को धारण करते हैं, जिसके द्वारा वे ईश्वर से मिले गुणों का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। हमें निरंतर लक्ष्यों प्रभावों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उससे भी बढ़कर मानव क्रियाकलाप के संदर्भ और उनके नैतिकता की सीमाओं का, जो अपने में एक शक्ति को वहन करते जिसमें हम जोखिमों को संलग्न पाते हैं। श्रोताओं, यह तब हमारे लिए वनस्पति और जीव जंतुओं के संबंध में मानवीय हस्तक्षेप के बारे में चिंतन हेतु एक उचित मापदंड बनता है, जिसमें वर्तमान और भौतिक वास्तविकता में मौजूद क्षमता का दोहन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अनुवांशिक हेराफेरी शामिल है। तर्क के प्रति विश्वास का सम्मान इस बात पर ध्यान देने की मांग करता है कि जैव विज्ञान आर्थिक हितों से अप्रभावित अनुसंधान के माध्यम से हमें जैविक संरचनाओं, उनकी संभावनाओं और उनके उत्परिवर्तन के बारे में कुछ शिक्षा दे सके। कोई भी वैध हस्तक्षेप प्रकृति पर केवल ईश्वर की मंशा के अनुसार अपनी ही दिशा में सृष्टि के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। श्रोताओं, अनुवांशिक संशोधन के बारे में सामान्य रूप से एक निर्णय लेना हमारे लिए कठिन है, चाहे यह वनस्पति या पशु चिकित्सा या कृषि ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपस में बहुत भिन्न होते हैं और उन पर विशिष्ट रूप से विचार मंथन करने की आवश्यकता है। यहाँ हम जोखिम को सदैव तकनीकी के उपयोग में नहीं पाते, बल्कि यह अनुचित रूप में या उनके अत्यधिक उपयोग करने से होता है। अनुवांशिक संशोधनें वास्तव में बहुत बार और निरंतर खुद प्रकृति के द्वारा होती है, ना ही उत्परिवर्तन मानवीय आधुनिक हस्तक्षेप के कारण होता है। जानवरों को पालतू बनाना, प्रजातियों का संकरण और अन्य दूसरे तरह की वैश्विक उत्परिवर्तन उदाहरण के लिए स्वीकार्य है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि अनुवांशिक संशोधन GM अनाज में वैज्ञानिक विकास हेतु प्राकृतिक जीवाणुओं के अवलोकन से शुरू हुआ, जहां पौधों के जीनोम को स्वचालित रूप से संशोधित किया प्रकृति में, जबकि यह प्रक्रिया अपने में धीमी है और हम इसकी तुलना शीघ्र समकालीन वैज्ञानिक विकास से नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि पिछला कई शताब्दियों की वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित है। श्रोताओं, यद्यपि इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण हमारे पास नहीं है कि GM अनाज इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, वहीं कई प्रांतों में इसके प्रयोग ने अर्थव्यवस्था के विकास में मददगार सिद्ध हुआ है, जिसके द्वारा कई समस्याओं के समाधान में सफलता सहायता मिली है। इसकी कई महत्वपूर्ण कठिनाइयां बनी हुई हैं, जिन्हें कम करके आका नहीं जा सकता है। बहुत से स्थानों में इन फसलों की शुरुआत होने के कारण उपजाऊ भूमि को हम कुछ एक लोगों के अधिकार में पाते हैं, क्योंकि छोटे उत्पादनों में निरंतर कमी हुई है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि को हम लोगों के हाथों से निकलता पाते हैं, जो उन्हें वास्तविक उत्पादन करने की क्षमता से वंचित करता है। इसके कारण कई संवेदनशील लोगों को अस्थायी मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ता है, तो वहीं बहुत से ग्रामीण कार्यकर्ताओं को गरीबी की मार झेल रहे शहरों की ओर पलायन करने को बाध्य होना पड़ता है। इन फसलों का विस्तार पारिस्थितिकी नेटवर्क की जटिलता को नष्ट करते, उत्पादन की विविधता को कम करते और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। बहुत से देशों में हम अल्पाधिकारों का विस्तार देखते हैं, जिनका उपयोग अनाजों और अन्य दूसरे चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि अन उपजाऊ बीजों के उत्पादन पर विचार किया जाए तो यह निर्भरता और भी बढ़ जाएगी। इसका प्रभाव किसानों को बड़े उत्पादकों से इन्हें खरीदने के लिए मजबूर करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरे सुतु अंतर्यामी सच्चिदानंद तो सबके स्वामी, मेरे सुतु अंतर्यामी सच्चिदानंद तो सबके स्वामी। सम्मुख तेरे मैं हूँ दोषी, पर तू दयावान बन जा हितैषी। सम्मुख तेरे मैं हूँ दोषी, पर तू दयावान बन जा हितैषी। मेरे सुतु अंतर्यामी सच्चिदानंद तो सबके स्वामी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। भागदौड़ भरी दुनिया में आज समय निकालना, किसी को समय देना अथवा किसी से मुलाकात करना एक कठिन काम है, क्योंकि व्यस्तता हमेशा रहती है। लेकिन पोप फ्रांसिस कहते हैं कि एक मुलाकात से जिंदगी बदल सकती है। यीशु से मुलाकात हमारे जीवन को नया बना सकती है। संत पापा ने 7 मार्च को एक संदेश के माध्यम से विश्वासियों को बतलाते हुए कहा, लोगों से मिलना, उनसे एक नजर डालना और अपनी कहानियां साझा करना यीशु के करीब आना है, जिसको जीने के लिए हमें बुलाया गया है। एक मुलाकात से जिंदगी बदल सकती है। सुसमाचार यीशु के साथ ऐसे मुलाकातों से भरा है जो हमें मुक्त और चंगा करते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले वैटिकन एवं परमधम पीठ के लिए फ्रांसीसी दूतावास रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेंगे। हमारे जीवन को पटरी पर लाना विषय वस्तु पर आयोजित सम्मेलन में लगभग 200 प्रतिभागी 16 से 18 मई को रोम में एकत्रित होंगे। पेरिस में 2024 ओलंपिक खेलों की रूपरेखा में वैटिकन में फ्रांसीसी दूतावास और संस्कृति के लिए वैटिकन विभाग 16 से 18 मई को खेल और आध्यात्मिकता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। कार्डिनल जोस तोलेंटिनो मोंडेका ने कहा, वास्तव में खेल का जीवन के आध्यात्मिक आयाम से हमेशा संबंध रहा है, जैसा कि पोप फ्रांसिस ने भी कई अवसरों पर जोर दिया है। संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कार्यक्रम के बारे बतलाते हुए कहा, अगर हम खेल के इतिहास को कलीसिया के इतिहास के समानांतर देखेंगे तो ऐसे कई क्षण आए हैं जिसमें खेल ख्रिस्तों के जीवन के लिए एक प्रेरणा एवं प्रतीक रहा है, अथवा ख्रिस्तीय धर्म ने स्वयं अपनी मानवतावादी दृष्टि से खेल को समृद्ध किया है। इसलिए प्रतिभागी यह समझने की कोशिश करेंगे कि खेल आज इतने लोकप्रिय क्यों हैं। वे जोखिमों की पहचान करेंगे, अधिक भाईचारे वाले सहिष्णु और निष्पक्ष समाज के निर्माण के लिए उसकी प्रासंगिकता का आकलन करेंगे और इसलिए समझेंगे कि खेल प्रतियोगिता में ईश्वर स्वयं को कैसे प्रकट करते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य 2 बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढना है, खेल का कलीसिया से क्या लेना देना है और कलीसिया को खेल से क्या कहना है। सम्मेलन में पहले दिन 16 मई को प्रसिद्ध खिलाड़ियों की गवाही, कुछ ठोस प्रेरितिक अनुभवों को साझा करने के द्वारा कलीसिया और खेल के बीच संबंधों पर गौर किया जाएगा, जो खेल को सुसमाचार की सेवा में और सुसमाचार को खेल की सेवा में रखता है।
दूसरे दिन 17 मई को इतालवी और फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों के योग्य वक्ताओं के एक समूह के चिंतन के माध्यम से व्यक्ति और खेल के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो खेल के शैक्षणिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और ई शास्त्रीय संदर्भ पर चर्चा करेंगे और तीसरे दिन अधिक व्यवहारिक आयाम होगा। वैटिकन के सन दमासो प्रांगण में 6 मई को 34 नए स्विस गार्डों ने शपथ ग्रहण कर पोप के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। 6 मई को 34 नए स्विस गार्डों की नियुक्ति हुई, जिन्होंने वैटिकन के सन दमासो प्रांगण में शपथ ग्रहण किया। यह दिन 147 स्विस गार्डों के वीर बलिदान की वर्षगांठ का दिन है, जो 1527 में रोम में संत पापा क्लेमेंट 7वें की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें अपने जीवन को खतरे में डालकर भी पोप और उनके सभी वैध अधिकारियों की रक्षा करने की घोषणा की जाती है, जैसा कि पूर्वजों ने अतीत में किया था, परंपरा के अनुसार ध्वज का स्पर्श का संपन्न किया गया। कार्यक्रम में पोप के प्रतिनिधि मोनसिनियर एडगर पेना पारा उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह में स्विस परिसंघ का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति वियोला एमहर्ट के नेतृत्व में उपस्थित था। प्रत्येक नए स्विस गार्ड ने एक हाथ से ध्वज का स्पर्श कर और दूसरे हाथ से 3 अंगुलियों को खोलकर ऊपर उठाते हुए शपथ ली, जो त्रित्व में ईश्वर का प्रतीक है। शपथ ग्रहण में इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, मैं निष्ठापूर्वक, वफादारी से और सम्मान पूर्वक शासन करने वाले पोप एवं उनके वैध उत्तराधिकारियों की सेवा करने, अपनी पूरी ताकत से खुद को उनके प्रति समर्पित करने, यदि आवश्यक हो तो उनकी रक्षा में अपने जीवन का बलिदान करने की शपथ लेता हूँ। मैं परमधम पीठ की रिक्ति के दौरान कार्डिनल मंडल के प्रति समान कर्तव्यों को पूरा करने का आश्वासन देता हूँ। मैं कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मान, निष्ठा और आज्ञाकारिता का भी वादा करता हूँ। ईश्वर और हमारे संरक्षक संत मेरी सहायता करें। स्विस गार्ड के कमांडर ने संत मती रचित सुसमाचार पाठ का हवाला देते हुए नवनियुक्त स्विस गार्डों को संबोधित कर कहा, जो कोई तुम्हारे बीच महान बनना चाहता है उसे तुम्हारा सेवक बनना होगा और जो कोई तुमसे प्रथम बनना चाहता है उससे तुम्हारा दास बनना होगा। उन्होंने मदर तेरेसा के शब्दों की याद कर कहा, वे हमें बतलाते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, प्रेम, विनम्रता और शांति की। मौन का फल प्रार्थना है, प्रार्थना का फल विश्वास है, विश्वास का फल प्रेम है, प्रेम का फल सेवा है और सेवा का फल शांति है। कमांडर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुर्भाग्य से आज के समाज में व्यक्तिवाद और आत्मबोध के समय में सेवा शब्द का नकारात्मक अर्थ है। आज दुनिया जिस तरह से चल रही है उसे देखते हुए हावी होने, निर्णय लेने, हर चीज पर नियंत्रण रखने की इच्छा, सेवा करने, पीछे खड़े होने और किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ खुद को समर्पित करने की इच्छा से कहीं अधिक बड़ी लगती है। उन्होंने कहा, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सत्ता, लोकप्रियता और ध्यान की खोज मनुष्य को इस बिंदु तक आकर्षित करती है कि मजबूत व्यक्ति कमजोर का तिरस्कार करता है और हमेशा उससे नीच बनाने की कोशिश करता है, जबकि सेवा उससे प्यार करने की व्यक्तिगत क्षमता में परिपक्व होने में मदद करती है और इससे भी अधिक वह प्यार किए जाने के अनुभव को जीता है। इस प्रकार गार्ड शांति का सहयोगी बन जाता है। पौत्र भूमि में युद्ध के कारण जब लोग लगातार तकलीफ झेल रहे हैं, इसराइली सेना ने फिलिस्तीनियों से कहा है कि वे रफा के हिस्से को खाली करें। इसराइली सेना दक्षिणी गजा शहर रफा में लोगों से शहर पर संभावित हमले से पहले एक विस्तृत मानवीय क्षेत्र की ओर बढ़ने का आग्रह कर रही है। इसराइली सेना ने रफा के पूर्वी क्षेत्र में रात भर पर्चे गिराए और नागरिकों से शहर में एक योजनाबद्ध ऑपरेशन से पहले छोड़ने का आह्वान कर रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।